रात का बोझिल सन्नाटा सुबह की हल्की किरणों में घुल चुका था। बंगले के गलियारों में एक अजीब सी ठंडक फैली हुई थी। रैना अपने कमरे में बैठी थी, सामने खुला सूटकेस रखा था। बिखरे कपड़े, किताबें और कुछ पुरानी तस्वीरें उसके चारों तरफ पड़ी थीं। उसकी आंखों में नींद नहीं थी, सिर्फ लालिमा और आंसुओं की नमी। उसका दिल बार बार वही दृश्य दोहरा रहा था, विक्रम का उसके करीब आना, उसका प्रतिरोध करना और फिर मुनी का अचानक आ जाना। हर बार उसकी आत्मा कांप जाती थी। वो सोचती, कितना गिर सकता है इंसान और कितना सह सकती हूँ मैं। उसने गहरी सांस ली और कपड़े तह करके सूटकेस में रखे। हाथ कांप रहे थे पर चेहरा दृढ़ था। बीच बीच में खांसी का दौरा उसे कमज़ोर कर रहा था। सिर भारी था, बदन में दर्द था, लेकिन फिर भी वो रुकने को तैयार नहीं थी। तभी दरवाजे पर हल्की दस्तक हुई। वो चौंक कर उठी। नौकर अंदर आया और व्हीलचेयर पर उसके पिताजी को कमरे में लेकर आया। रैना, तुम? पिताजी की आवाज़ कांप रही थी। उनकी आंखें जैसे चिंता से धुंधली हो गई थीं। ये सब पैकिंग? और तुम्हारी तबीयत भी तो खराब लग रही है, आखिर क्या हुआ है? रैना उनकी ओर भागी और उनके हाथ पकड़ लिए। आंसू उसकी आंखों से बह निकले। पिताजी, बहुत सह लिया मैंने, पर अब और नहीं। पिताजी ने उसे ध्यान से देखा। साफ साफ कहो बेटा। रैना वहीं ज़मीन पर बैठ गई, उनका हाथ अपनी गोद में रखते हुए। उसने सब कुछ कह डाला, विक्रम की हरकत, उसकी ज़िद, मुनी का शक और उसकी मजबूरी। हर शब्द के साथ उसका दिल हल्का होता गया, लेकिन चेहरा और ज़्यादा थकान से झुकता गया। पिताजी की आंखें भर आईं, उनकी झुरियों में छुपा दर्द अब बाहर आ गया था। मैंने कहा था ना बेटा, इस आदमी पर हमें कभी भरोसा नहीं करना चाहिए था। उसकी नीयत साफ नहीं थी, उसकी इतनी हिम्मत की। उन्होंने गुस्से में हाथ भींच लिया और व्हीलचेयर को आगे बढ़ाने की कोशिश की। मैं अभी जाकर उससे बात करता हूँ, अभी बताता हूँ उसे कि नहीं पिताजी, रैना ने तुरंत रोका। वो उनके सामने घुटनों के बल बैठ गई और उनका हाथ थाम लिया। रहने दीजिए, अब और कोई लड़ाई नहीं चाहिए, हमें इस घर में अब नहीं रुकना है। आप ही कहते थे ना कि इज्जत सबसे बड़ी पूंजी होती है, तो फिर क्यों इसे किसी के पैरों तले रौंदने दें? पिताजी की आंखें भर आईं, उनकी झुरियों में छुपा दर्द अब बाहर आ गया था। बेटा, लेकिन हम कहाँ जाएंगे? रैना ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा। जहाँ भी जाएंगे पिताजी, वो हमारा घर होगा। इस बंगले में तो अब सिर्फ जहर बचा है, हमें यहाँ एक पल भी नहीं रहना। वो उठी और अपना फ़ोन निकाला। कांपते हाथों से उसने टैक्सी ऐप खोला और बुकिंग कर दी। स्क्रीन पर दिखा कैब 10 मिनट में पहुँचेगी। उसने जल्दी जल्दी सामान समेटा, सूटकेस बंद किया, हाथ में बैग उठाया और पिताजी के कंधे पर शॉल डाली। उनके माथे पर हाथ फेर कर बोली, चलिए पिताजी, अब हमें यहाँ से जाना है। नौकर ने व्हीलचेयर बाहर की ओर घुमाई। रैना ने एक आखिरी नज़र कमरे पर डाली। दीवार पर टंगी तस्वीरें, पर्दों की खुशबू और कोने में रखा छोटा सा आईना, सब उसके साथ गुजरे दिनों की यादें थे। लेकिन अब वो सब अतीत बन चुका था। वे धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे आए। बंगले का आंगन उनके सामने फैला था। दरवाजे पर टैक्सी खड़ी थी। इंजन की आवाज़ धीरे धीरे गूंज रही थी। रैना ने नौकर की मदद से पिताजी को टैक्सी में बिठाया। उसने अपना सूटकेस डिक्की में रखा और खुद दरवाज़ा बंद करने के लिए पलटी। उसकी नज़रें अनजाने में बंगले की सीढ़ियों की तरफ चली गईं। वहाँ उसकी कामिनी, मुनी, मानव और विक्रम खड़े थे। सब चुपचाप उसे जाते हुए देख रहे थे। कोई कुछ नहीं बोला, कोई चेहरा नहीं हिला, बस उनकी आंखें उसे घूर रही थीं। रैना ने एक पल उनकी तरफ देखा, फिर अपने पिताजी की ओर मुड़ी। उसका चेहरा अब आंसुओं से खाली था, सिर्फ दृढ़ता बची थी। उसने टैक्सी का दरवाज़ा बंद किया और ड्राइवर से कहा, चलो। इंजन गरजा और गाड़ी धीरे धीरे बंगले के बड़े दरवाजे से बाहर निकल गई। पीछे बंगले जस की तस खड़ी थी, ठंडी, भारी और बेमायने। और यूं रैना ने उस घर से, उस दर्द से और उस जहर से हमेशा के लिए अपना रिश्ता तोड़ दिया।